ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने नए वक्फ कानून पर आज अपना अंतरिम आदेश वापस ले लिया, क्योंकि केंद्र ने शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए तीन बिंदुओं पर अपनी दलीलें तैयार करने के लिए और समय की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई अब कल होगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को कैसे अस्वीकृत किया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसे वक्फ पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे। भारत ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान की निराधार टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वक्फ विधेयक पर पाकिस्तान की टिप्पणियों के बारे में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने स्वयं के खराब रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बीआर गवई के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति गवई सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और उनके नाम की सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्रालय को की गई है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में एक कौशल प्रशिक्षण मंच की स्थापना का आह्वान किया है। इससे विश्व की विशिष्ट कुशल जनशक्ति की आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता मिलेगी। डॉ. मांडविया ने नई दिल्ली में आज भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत इस गलियारे में कुशल जनशक्ति प्रदान करके अपने युवा जनसांख्यिकीय लाभांश अधिकतम कर सकता है। उन्होंने कहा कि भाग लेने वाले देश भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं और आपसी कौशल प्रमाणन प्रदान कर सकते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 वर्ष में देश का मछली उत्पादन 95 लाख टन से बढ़कर 184 लाख टन हो गया है। श्री कुरियन ने आज पुदुचेरी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह मामला प्रवर्तन निदेशालय के दायरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि ये व्यापारिक लेनदेन का स्पष्ट उदाहरण है।
ये शुद्ध बिजनेस ट्रांजैक्शन का मामला है तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये ईडी के परव्यू के बाहर है या किसी प्रकार की राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। जबकि यह विषय 2012 में प्रारंभ हुआ, अक्टूबर 2013 में यूपीए सरकार के शासनकाल में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर यह केस प्रारंभ हुआ था।
भाजपा प्रवक्ता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार नए वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू नहीं करेगी, जिससे पता चलता है कि सुश्री बनर्जी को संविधान का कोई सम्मान नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया। ये ऐप केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया डिजिटल समाधान है। ये दूरदराज के इलाकों में विशेष रूप से लाभदायक होगा। हांगकांग से अमेरिका भेजी जाने वाली वस्तुओं पर अमेरिका के शुल्क में छूट समाप्त करने के निर्णय के बाद हांगकांग पोस्ट ने सामान भेजने पर आज से रोक लगा दी है। हांगकांग पोस्ट डाक सेवा ने कहा कि अमेरिका 2 मई से डाक के माध्यम से आने वाली वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने जा रहा है। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पेरू में ISSF विश्व कप के दूसरे चरण में आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा होगी। भारत प्रतियोगिता के पहले दिन स्वर्ण, रजत और कांस्य सहित 3 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।